चरित्र मोक्षम ना लेक्चर नंबर 8। आचार्य श्री निमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने इस लब्धिसार क्षपणासार ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित तोरण जी ने इसकी ढूंढारी भाषा में रचना की है। इसका नाम है सम्यक ज्ञानचंद्रिका लब्धिसार क्षपणासार, और उसको जो हिंदी अनुवाद है उसका, उसके आधार से अभी हम यहाँ कुछ चर्चा कर रहे हैं। कुछ प्रश्न लेके फिर अपना विषय आगे चलेगा। प्रश्न है, बिना आयु बांधे कोई जीव पुरुषम श्रेणी चढ़कर 11 स्थान स्पर्श के मिथ्यात्व में उतर जाए। देखो, कोई 11वें से कोई डायरेक्ट मिथ्यात्व में नहीं जा सकता। 11वें के बाद नियम से 10वें में, नियम से 9वें में, 8वें में, 7वें में, 6 तक तो नियम से। कोई जो वहाँ से 5वें 4थे में जा सकता है या 6ठा 7वां चलता रहेगा, फिर वेदक समय दृष्टि हो जाएगा। परंतु ऐसे भी जीव हैं परिणामों के वश, उसके बाद अंदर के दो या कालांतर के बाद भी मिथ्यात्व में जा सकते हैं। तो यहाँ प्रश्न है, मिथ्यात्व में उतर जाए तो वह कौन कौन सी आयु बांध सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव को तो चारों ही आयुओं का बंधन हो सकता है। हमने 14 जीव समाज देखे ना, एक लिए सूक्ष्म गांधर्व पर्याप्त पर्याप्त सारे, सभी 14 जीव समासों में ऐसे कितने ही जीव पड़े हैं जिन्होंने कभी ऋषभ से नहीं चढ़ी उतरी थी? ऐसे कितने ही जीव अभी निगोल में पड़े हैं जिन्होंने कभी ऋषभ से नहीं चढ़ के उतरी थी? असंख्यातों बार प्रथमोक्षम समय को प्राप्त किया था, असंख्यात बार पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया, कितने ही बार भूमि भी हुए थे, फिर भी परिणामों के वश ऐसे कुछ बातें बन जाती है। सम्यक तो होते हुए उनकी आयु तो नहीं बनती है, सम्यक तो छूट कर मिथ्यात्व में आते हैं, तो जैसे परिणाम होंगे वैसे आयु बनेगी, उसमें कोई रुकावट नहीं। ऐसा कोई कंसेशन नहीं किया, इन्होंने तो एक बार कुशम से नहीं चढ़ी तो इनको ये नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कुशम से नहीं चढ़ के उतरने वाले को भी मिथ्यात्व में अर्धपुत्र परावर्तन प्रमाण जो अनंत काल है उतना वो मिथ्यात्व में अगर घूम सकते हैं, उसका अर्थ क्या? हाँ, उनका अभी मोक्ष निश्चित हुआ है, एक बार समय दर्शन हुआ तो अभी वो जीव तो निश्चित रूप से अर्धपुत्र परावर्तन के अंदर अंदर मोक्ष जाएगा ही जाएगा, वो तो नियम है। परंतु उपशम से भी चढ़ के उतरा है इसलिए अभी मिथ्यात्व में नहीं जाएगा, अभी अन्य ऐसी कोई बात नहीं है। निगोल आदि सभी पर्याय में ऐसे जीव पड़े हैं। आप भी हो सकते हैं। हाँ, ये हो सकते हैं ना, ये सारे हम अनादि मिथ्या विषय ये ऐसे जो प्रटुकड़ा करते हैं बहुत सारे युवा क्यों करते हैं, और इसमें से कितने ही हम सहित आप भी हो सकते हैं ना, कि पहले कभी प्राप्त किया होगा तो वो नहीं के बराबर हुआ है, अभी उसके प्राप्त किया होगा उसके उसमें नहीं रहना कि हमारे बाप ज्यादा बहुत अमीर थे, हाँ उनको खाने के लाले पड़ गए, वो बात में नहीं चले। पहले किया हो या नहीं किया हो उससे कुछ नहीं लेना देना, अभी वर्तमान पर्याय में करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि द्रव्य लेंगे कौन कौन सी आयु बांध सकता है? आयु बांधने के जो कुछ लेशा के परिणाम है, तब जो उसकी लेशा होगी वैसे आयु का बंधन होगा। कृष्णादि, अभी कृष्णादि लेशाओं में भी वो देवायु नहीं बांधता ऐसी बात नहीं है, उसके बहुत आयु बंध के अलग अलग परिणाम है। मिथ्या दृष्टि है ना तो उसके योग्य कोई आयु बन सकती है? ये द्रव्य लिंग यानी संयम धारण कर, उन संयम धारण किया अपन वो उनके जैसे पीत पद्मा लेशा वगैरह परिणाम होंगे तो देववती का बंद कर रहा होगा, अन्य जो जैसे उसके परिणाम होंगे उस समय वैसे आयु का बंद होगा। तो बाहर में उन्होंने व्रत लिए इसके कोई अन्य आयु बांधते नहीं, ऐसी कोई नहीं, वो परिणामों के अनुसार है, बाह्य शरीर की क्रिया के अनुसार नहीं होता, फल हमारा परिणाम के अनुसार होता है। प्रथमोक्षम सम्यक तो थया बाद क्षायिक सम्यक तो नहीं प्राप्ति कया गुण स्थान में थे सके। देखो प्रथमोक्षम होने के बाद वो तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व का काल उपशमित जो हुए हैं वो अंतर्मुख के लिए ही उपशमित होते हैं, उसके बाद नियम से वो वेदक समय दृष्टि हो जाएगी अगर उसका सम्यक्त्व बना रहे, या अगर सम्यक्त्व छूट जाए तो मिथ्या समय जा सकते हैं। कोई उपशम के काल में ही जिसका एक समय से लेकर अच्छा अवली तक अनंतानुबंधि का बाई चांस उदय हो जाए यानी जीव के परिणाम बिगड़ जाए तो साथ ही गुणस्थान में भी जा सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे कोई भी गुणस्थान पॉसिबल है। पर जिनको सम्यक तो वो वेदक सम्यक तो होता है वो बाद में वो क्षायिक सम्यक तो कौन से गुणस्थान में चौथे या पांचवें छठे या सातवें उसका प्रारंभ कर सकता है, वो वेदक समय दृष्टि क्षायिक समय दृष्टि हो जाता है। उसके लिए जो कंडीशन है कर्मभूमि का मनुष्य होना चाहिए, केवली के पादमूल में होना चाहिए, वो सब कंडीशंस लागू होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति तथा दर्शन मोनी यानी अनंतानुबंधी कषाय चोपड़ीनो साथे अभाव थी जाए छे नहीं, पहले अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है उसके तीन करण अलग, विसंयोजना के बाद एक अंतर्मुख के बाद वो क्षायिक के लिए फिर दोबारा तीन करण परिणाम करता है, उसमें पहले मिथ्यात्व का क्षय होता है फिर सम्यक मिथ्यात्व का फिर सम्यक प्रकृति अनंतानुबंधी नो विसंजन द्वितीय सौक्षमिक समीक्षा तेमज थाय बिल्कुल। अनंतानुबंधी का पहले विसंजन होता है बाद में जो मिथ्यात्व का नाश होता है क्षय होता है संक्रमित होकर क्षय हो जाता है, मिथ्यात्व के परमाणु सम्यक मिथ्यात्व रूप हो जाएंगे और फिर वो सम्यक मिथ्यात्व के सब सम्यक प्रकृति रूप हो जाएंगे, वो भी कांड घात वगैरह वगैरह को ये सब इसमें विस्तार से क्षायिक सम्यक्त्व। क्षायिक सम्यक्त्व में श्रेणी चढ़वा पूर्वे त्रण करण परिणाम हो बिल्कुल, क्षायिक सम्यक्त्व करने के लिए तीन करण परिणाम किए थे वो अलग, क्षायिक सम्यक् दृष्टि जी अभी जो श्रेणी के राजा क्षायिक सम्यक् दृष्टि जब क्षायिक किया था तब तीन करण परिणाम किए थे, बाद में उनका चौथा गुणस्थान रहा अब नरक में है, जब यहाँ आएंगे कीर्तन कर होने वाले हैं तो फिर पहले तो आएंगे बालक हो गए तो वहाँ तो उनका चौथा गुणस्थान है, आठवें के बाद वो पांचवा वगैरह हो जाएगा और फिर मुनि हो गए तो छठा सातवा गुणस्थान होगा, जब श्रेणी चढ़ेंगे तो फिर तीन करण परिणाम करके ही श्रेणी चढ़ेंगे, वो तो श्रेणी में तो तीन करण परिणाम होते ही होते। प्रथमोक्षम समय वक्त अनंतानुबंधी नो संक्रमण थाय छे उसको संक्रमण नहीं कहते, वो एक समय में जो युक्त संक्रमण के द्वारा अन्य रूप से उदय में आते हैं उसका नाम संक्रमण में नहीं लिया जाता, युक्त संक्रमण को संक्रमण नहीं कहते, वो एक समय में अन्य रूप होकर उदय आता उसको अप्रशस्त उपशम कहते। अनंतानुबंधी नो अभावस्थाय छे अभाव नहीं होता, अनंतानुबंधी सत्ता में छे के नहीं बिल्कुल है, प्रथमोक्षम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी सत्ता में है तभी तो उस काल में उसका उदय हो जाए तो जीव सातादन गुणस्थान में चला जाता है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व थया पछी फरी मिथ्यात्व नो उदय थाय तेवा सादी मिथ्यादृष्टि जीव फरीथी सम्यक्त्व प्रकट करे तो प्रथमोक्षम सम्यक्त्व ज करे कि क्षायिक सम्यक्त्व पण प्रकट करी शके, ना प्रथमोक्षम करता है ना क्षायिक करता है, वो असंख्यात वर्षों तो करेगा तो वेदक सम्यक्त्व प्रकट करेगा और कोई भी जीव मिथ्यात्व में से डायरेक्ट क्षायिक कर ही नहीं सकता, वो वेदक समय दृष्टि ही क्षायिक समय दर्शन का कार्य करते जिसके समय प्रकृति का उदय चल रहा है। प्रथमोक्षम सम्यक्त्व ने वेदक चोक्षम सम्यक्त्व में शू शुंभे प्रथमोक्षम सम्यक्त्व में सभी उपशमित है तीनों प्रकृतियाँ और शोषम सम्यक् दृष्टि में मिथ्यात्व और सम्यक् मिथ्यात्व उपशमित, कैसा वो अंतर वाला उपशम नहीं है अप्रशस्त उपशम है, वो दूसरे विषय में मिथ्यात्व रूप से पड़े हैं परमाणु
और वो उदय आते आते वो क्यूक संक्रमण द्वारा सम्यक प्रकृति रूप से उदय में आते रहे, वो है वेदक समय। आपका प्रश्न है वेदक समय को सिर्फ शायद करने की बात, तो उसके सागर वाले वो सागर में आ ही नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? वो सागर में होने की कंडीशन मिथ्यात्व में जाने पर होती है। जब समय दृष्टि है तो जितने मिथ्यात्व की स्थिति उसकी उतनी ही है, अंतर कोड़ा कोड़ी सागर की ही है, वो सागर तक ला ही नहीं सकता। वो विषय चलेगा अभी तक हम द्वितीयोक्षम करके रुके है ना, अभी श्रेणी चढ़ते हैं। द्वितीयोक्षम समझने के लिए हमने प्रथमोक्षम का विषय दोबारा लिया, क्योंकि उक्षम होता है ना, क्या होता है, अंतर होता है, उसके बाद क्या होता है, ये सब कंफ्यूजन बहुत चल रहा था, इसके लिए ये बात अभी हमने देखी। पेज नंबर 159 निकालना। हमने वो द्वितीयोक्षम की बात देख ली विस्तार से, वो आपके चार्ट में भी देख लो कि उसमें हमने देखा था कि द्वितीय समय यानी द्वितीयोक्षम किया, किसने किया? सातवें ग्रंथानुवर्ती मुनिराज ने किया। तो द्वितीयोक्षम करने वाला कौन था? तो वेदक समय दृष्टि था। वेदक समय दृष्टि था तो उसके मिथ्यात्व भी है, समय मिथ्यात्व भी है और समय प्रकृति भी है, उदय समय प्रकृति का चल रहा है, मिथ्यात्व समय मिथ्यात्व का अप्रशस्त उक्षम है उस समय। अब वो जीव क्या करेगा? तीनों में अंतर करेगा, उसके लिए वो अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण हमने सब विस्तार से देख लिया। और अनिवृत्तिकरण का संख्या का भाग शेष रहता है तब जाके वो तीनों में अंतर करने का कार्य करता है। ये अंतर वाला वो चार्ट में आपने पहले नंबर के चार्ट में बताया था, इसका अंतर ऐसा करता है कि इसकी पहली स्थिति आवली प्रमाण देती है मिथ्या मिथ्या और समय मिथ्या और समय प्रकृति की एक अंतर्भूत प्रमाण दे जाता है, उसके ऊपर सब गैप होता है, वो गैप का द्रव्य कहाँ कहाँ जाता है उसकी बात भी हमने विस्तार से देखी। इसके बाद जो प्रथम स्थिति में समय प्रकृति के द्रव्य, प्रथमोक्षम में समय तो में वहाँ मिथ्यात्व का द्रव्य था, यहाँ समय प्रकृति का द्रव्य, तो समय प्रकृति एक एक करके उदय में आएगी, बाय दैट टाइम ऊपर जो तीनों प्रकृति उपशमित हो जाएगी, क्योंकि तीन की सत्ता है तो तीनों भी उपशमित किया जाएगा और ऐसी पोजिशन आएगी कि यहाँ समय प्रकृति के सारे निषेक उदय में आकर चले जाएंगे, एक गैप की पोजीशन आएगी, ऊपर का सारा उपशमित है और जब वो गैप में जीव आता है यानी वो समय शुरू होता है तो जिनको द्वितीयोक्षम समय की प्राप्ति हुई है। द्वितीयोक्षम होने के पश्चात भी हजारों बार साक्षा सातवा पुनस्थान चलता है, ये अभी हमने यहाँ पढ़ा था पेज नंबर 159। प्रकृति के नहीं होते, उपशमने का जो कार्य है वो जीव के अंतरंग में स्थिरता जो विशुद्धि का बढ़ना वही उसका उपशमने का कार्य है। ये सारा जो प्रोसेस चलेगा अभी उपशम श्रेणी का भी और द्वितीयोक्षम का भी, ये सब जीव के परिणाम क्या हो रहे हैं? विशुद्धि विशुद्धि हो रहे हैं। अब यहाँ 219 की टीका वहां से पढ़ेंगे हम। इस तरह यानी द्वितीयोक्षम के बाद की बात है, अप्रमत्त से प्रमत्त में, प्रमत्त ने छठा गुणस्थान, अप्रमत्त ने सातवां और प्रमत्त से अप्रमत्त में हजारों बार पलटने पर अनंतानुबंधी चतुष्क बिना, क्योंकि उसने उसका विसंयोजन कर लिया, वो सत्ता में ही नहीं है तो उसको छोड़कर चारित्र मोह की अवशेष 21 प्रकृतियों को उपशमाने का उद्यम करता है। 21 प्रकृतियां कौन सी है? अप्रत्याख्यानावचार, प्रत्याख्यानावचार, संयोगचार और नौ नौकशा, ये 21 प्रकृतियां सत्ता में है, इनके उपशमना का उद्यम करता है। अन्य प्रकृतियों का उपशम होता नहीं क्योंकि उनके उपशमकरण नहीं है। ये उपशमकरण किसको कहेंगे? अभी हमने जो अंतर करके जो प्रशस्त उपशम किया जाता है उसको कहते हैं उपशमकरण, और जो
विदति निकांचित और उपशमन वाली जो बात होती है और प्रशस्त उपशम जो उसको कहेंगे,
ऐसे कितने ही परमाणु हैं कि जो उदयावली में एंटर होके उदय में ही नहीं आ सकते।
निकालो पेज नंबर 20 निकालो भूमिका का पेज, इसी पुस्तक में 20 पेज पर आना। 20 यानी वो प्रस्तावना वाला 20 नहीं, उसके बाद वाले वहां पर भी 20 नंबर है, वहां नहीं जाना है। जहां लतीसार भूमिका शुरू होती है 9 नंबर के पेज से, वहां क्रम से 20 पेज पर आना।
नीचे का पैराग्राफ देखो, यहाँ क्या कहते हैं, विवक्षित प्रकृति के, विवक्षित नहीं जिसकी बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर उदयावली के बाह्य निषेकों के परमाणु। देखो पूरा निषेक तो क्रम क्रम से उदय की तरफ आता है तो उदय में आता है, परंतु उसके परमाणु अपने निषेक नीचे आने के पहले वो नीचे आ सकते हैं ना, जब हम उत्तीर्णा वगैरह कहते हैं, ऊपर का आकर्षण होकर नीचे आ ही सकता है। कितने परमाणु जो आने योग्य है वो आते हैं, कितने अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। तो कहते हैं कि लक्षित प्रकृति के उदयावली के बाह्य निषेकों के परमाणु, पूरा निषेक नहीं कुछ परमाणु जो उदयावली में प्राप्त करने योग्य न हो उनको कहते हैं उपशांत द्रव्य। कुछ परमाणु का आकर्षण उत्कर्षण संक्रमण सब होता रहता है और कुछ उदीर्णा होकर फिर भी जाते हैं, पर कुछ परमाणु ऐसे है अड़ेल कि वो उदयावली में नहीं प्रवेश करते, ऊपर ऊपर उसका उत्कर्षण उत्कर्षण होता रहता है। तो कहते उसको कहेंगे उपशांत द्रव्य। यहाँ उपशम विधान से मोह का उपशम करते उसका ग्रहण नहीं करना, क्योंकि उपशम भाव मोह ही का है और उपशांत करण सर्व प्रकृतियों के पाए करता है। ये डिफरेंस समझ में ऐसा जो उपशांत और निधति निकाचित आदि जो कहने में आते हैं वो सभी कर्मों में ऐसे होते हैं परमाणु, कुछ परमाणु, परंतु यहाँ जो हमने प्रशस्त उपशम जो अंतरकरण को जो उपशम होता है ये जो बात है वो दोनों में होती है, दर्शन होने में और चारित्र होने में, अनंतानुबंधी को छोड़कर। इसलिए वो उपशम करना वो अलग बात है, नहीं उपशम करण अलग बात है। अब आते हैं अपने देश पर, ये बात है जो 10 करण कहते हैं ना, इन कर्मों की 10 अवस्थाएं हमने देखी है। एक है बंध, एक है उसका सत्ता यानी सत्व, एक है उदय, एक है उदीर्णा, ये सब ख्याल में आ रहे हैं उसके शब्दों में। एक है उपशम और एक होता है संक्रमण, अपकर्षण, उत्कर्षण, निधत्ति निकाचन। ये निधत्ति निकाचन अभी पढ़ लो, वहां 21 पेज पर है। यहाँ कहते उपशांत आदि, नीचे से 20 के नीचे की लाइन, उपशांत आदि तीन करण, तीन करण है वो, तीन करण अध प्रवृत्त वाले तीन करण नहीं, वो करण लब्धि वाले तीन करण नहीं। ये जो 10 करण 10 अवस्थाएं बताते हैं उसमें से ये ब्रैकेट में लिखा है, देखो 21 पेज पर पहली लाइन, उपशांत निधत्ति और निकाचित, ये 8वें गुणस्थान तक ही कहे हैं और उपशम भाव 11वें गुणस्थान तक पाया जाता है। यानी जो अनिवृत्तिकरण परिणाम होते हैं उसके कारण ये उपशांतपना, निधत्तिपना और निकाचितपना नष्ट हो जाता है। शास्त्र में आता है जिनबिंब दर्शन से नष्ट हो जाता है, ऐसा आपने सुना होगा। तो हम तो 2 रोज जाके जिन बिंब दर्शन करते तो नष्ट होगा कि नहीं होगा ना? तो कहते उसको नमस्कार ही नहीं कहे। ये 9वीं पुस्तक धौला ने बात है, वहां तो यही प्रश्न पूछा है, नमो जिनानम कहने से ये निधत्ति निकाचित वो सब ये नष्ट हो जाते हैं ऐसा लिखा है, और यहाँ तो कहते वो तो अनिवृत्ति कर्म परिणाम से। तो कहते कि जो सम्यक दृष्टि है वही का उसी का वो नमस्कार है, वो जगन्य नमस्कार है, और ज्ञान और ध्यान में लीन ऐसे जो जीव है उन्हीं को यह नमस्कार होता है, जिसके असंख्यात लोक प्रमाण भेद बताए हैं नमस्कार होंगे, और उन्होंने जिन्हें तो भगवान को सच्चा नमस्कार किया। यानी जब तक समय दर्शन नहीं हुआ तो जिन्हें भी प्रदर्शन हुआ ही नहीं ऐसा कहेंगे, क्योंकि निधत्ति निकास तो अनिवृत्तिकरण परिणाम में ना नष्ट ही नहीं होते, और जब तक निधत्ति निकाचित नष्ट नहीं होगे वो स्थिति कांड घात वगैरह बनेंगे कैसे, समझ में आते ही ना। जो कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं तो नहीं छोड़ते तो नीचे तो आना है उसको, आकर्षण छोड़ना है। अभी इसके अर्थ देखते हैं हम 21 पेज पर देखते हैं। विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु, पूरी प्रकृति को निधत्ति और निकाचित नहीं कहते, क्योंकि हमने सब हवा बना दिया ये क्या है निदस्ती कर्म बांधेंगे निकाचित कर्म बांधेंगे पूरा कर्म निदस्ती और निकाचित नहीं होता कुछ परमाणु जो उस निषेक में से नीचे ऊपर नहीं जा सकते संक्रमण नहीं सकते उदयावली में नहीं आ सकते उनको ये नाम देखो विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु शब्द लिखा है संक्रमण होने और उदयावली में प्राप्त होने के योग्य न हो उसको कहते हैं निदस्तीकरण द्रव्य है वो संक्रमण होकर जैसे क्रोध के परमाणु रोगमाया रूप नहीं होंगे अपनी जगह रह जाएंगे अपने रूप से रह जाएंगे जहाँ बंधे है उसी में बने रहेंगे उसको कहेंगे वो निरस्ती वाले उदय में आएंगे वो निश्चय जब उदय में आएगा तब आएंगे पहले उसके पहले वो अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे बस इसका विधान उसका अर्थ है बाकी कर्मों में जो अन्य परमाणु है कुछ संक्रमित होते रहते हैं कुछ का आकर्षण होता है कुछ का उत्कर्षण होता है कोई उदयावली में ये सभी कर्मों में ऐसी बातें बनती रहती है कुछ परमाणु अपने निश्चय में बने रहेंगे
तो
उसको ये निदस्ती निकाचित कहेंगे हाँ अब भी स्थिति घटेंगे तो अपनी जगह कहाँ रहे हो आकर्षण हो अनुभाग में अपनी जगह रहना है हाँ तो जो परमाणु संक्रमण होने के पहले फिर पढ़ती हूँ और उदयावली में प्राप्त होने के योग्य न हो वह निदस्तीकरण द्रव्य है ऐसा जो निदस्तीपना जो है द्रव्य में वो अनिवृत्तिकरण परिणाम से नष्ट होता है वो अभी हम उक्षम श्रेणी में वो पढ़ने वाले हैं इसलिए मैं ये बात निकाली यहाँ क्या प्रश्न है हाँ वो भी उसमें अभी आयु में तो क्या लगाना है आयु तो एक एक ही निश्चित नीचे आता है आयु में तो उत्कर्षण होता ही नहीं है ना ही आयु में संक्रमण होता है आयु में आकर्षण होकर उदीर्णा होती है जिसका उदय चल रहा है हमारी मनुष्य का उदय है तो उदीर्णा रूप से थोड़े थोड़े परमाणु आते ही रहते हैं नीचे उसमें तो कोई बात नहीं है वो तो वहाँ पर भी होगी पूरा निषेक तो आता ही नहीं कभी नीचे आठवें नहीं नौवें आठवें तक रहता है अभी जो मिथ्या तो प्रथमोक्षण प्राप्त करता है वो तो मिथ्या तो प्रकृति में लगा है उसका निदत्ति निकाचितपना वहाँ नष्ट हो जाएगा जब अनिवृत्तिकरण परिणाम से निदत्ति निकाचितपना नष्ट हो जाता है नहीं हो सकती पूरी प्रकृति नहीं है जो परमाणु लिखा है ना प्रत्येक उत्तर प्रकृति की भी निषेक रचना हुई जब बंधे थे तो निषेक रचना हुई उसमें तो निषेक रचना हुए ने वो कर्म बंधे तो उसमें से अपकर्षण उत्कर्षण उदयावली में आना संक्रमण होना ये सब बातें चलती रहती हर एक कर्म में कुछ परमाणु अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे वो निषेक में वैसे बने रहेंगे ये जरूरी है कि पूरा का पूरा निषेक ऊपर नीचे तो होता नहीं है कभी उसको यहाँ निदत्ति निकाचित आदि नाम है तो हमें ऐसा लगता है कोई प्रकृति पूरी निदत्ति वाली है ना मिथ्या तो की सत्ता में है ना पड़े रहेगी वहाँ ऊपर ऊपर के निषेकों में जो होते हैं वो तो नीचे के निषेकों में रहेंगे ऐसी कोई परमाणु जरूरी नहीं कि जो कांडघात होकर नीचे आते हैं उसका अर्थ क्या है जो अपकर्षण होकर उदयावली में आ रहे हैं उसमें वो निकाचितपना नहीं था पहले ऐसे जीव परमाणु नीचे आएंगे अभी उसमें जो अपना थोड़ा कॉमन सेंस है यथायोग्य लगा लेना हम यानी जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर का भी जो बांधा है उतना ही रहता है ऐसा कुछ बात नहीं है वो नीचे के स्थितियों में पड़े रहेंगे ऐसे परमाणु जब क्षय होता है तो उसमें तो अनिवृत्तिकरण में तो होता है वो तो अन्य लोगों पर नष्ट हो ही जाएंगे जैसे मिथ्यात्मक प्रकृति में जो निदत्ति निकाचित हो रहे जो संक्रमण रूप नहीं हो सकते अब जब तीन कर्म परिणाम मान लेंगे तो संक्रमण होकर सारे मिथ्यात्मक के परमाणु नष्ट होने हैं तभी तो उसका क्षय होगा ना तो उसका निदत्तीपना नष्ट होना चाहिए कि नहीं तो अनिवृत्तिकरण परिणाम से वो नष्ट हो जाता है इतनी बात पूछना तीर्थंकर प्रकृति वाला है तभी क्या हुआ जब तक वो अनिवृत्तिकरण परिणाम नहीं मानता है सबके लिए कॉमन है रूल में कोई अपवाद नहीं होता हाँ ये उपशांत इसको उपशांत करें उपशांत करण उपशांत उपशांत निदत्ति और निकाचित तीनों को एक साथ ले
और ये जो उत्तम भाव हम कहते हैं जो ग्यारह गुण स्थान तक देता है तो जो उत्तम भाव होता है ग्यारह गुण स्थान तक होता है उसमें जीव का परिणाम नहीं दिखता है लेकिन जो उच्चतम चरण में अगर कुछ परमाणु अपने जगह पर रहते हैं जो उद्यावधि में नहीं प्राप्त होते उसके अंदर भी क्या कोई जीव का परिणाम निमित पाया?
नहीं नहीं, जीव में जो परिणाम बांधे थे उसी में इस तरह से उसने बांधे थे, ये उसने तो अनंत परमाणु बांधे, तो अनंत परमाणु बांधे जीव के ही कारण होते तो सब परमाणु निर्दत निकाय जितने होने चाहिए, वो परमाणु की अपनी योगी स्थिति भी जो है आबादा के ऊपर एक समय का निषेक है और जो अंतिम निषेक है जो अनेक कोड़ाकोड़ी चालू होता है उसमें स्थिति के वेरिएशन क्यों पड़े? परिणाम तो एक है और स्थिति में असंख्यात भेद पड़े, परिणाम एक है, अनुभागों में अनंत भेद पड़े क्योंकि अनंत परमाणु बनते उसमें अनंत प्रकार के अनुभाग बनते अलग अलग परमाणु में, निमित्त से कार्य नहीं होता ये बात तो इससे सिद्ध होगी, परमाणु की भी अपनी योग्यता से वो उस रूप परिणामित हो रहे हैं, है ना। ये पेज नंबर 21 को हम देख रहे हैं, ये विभक्ति हमने पढ़ लिया, उसके नीचे विवक्षित प्रकृति के जो परमाणु संक्रमण होने उदयावली में प्राप्त होने उत्तीर्ण होने और उत्कर्षण अपकर्षण होने योग्य न हो, ऊपर के निदत्ति वाले उत्कर्षण अपकर्षण तो हो रहे पर वो उदयावली के ऊपर ही ऊपर, ये कैसे है? निकाचना वाले इसका उत्कर्षण अपकर्षण भी नहीं होगा, न संक्रमण होगा न उदीर्ण होगा, जहाँ है वहाँ पड़ेगा, इतना ही उसका अर्थ है और कुछ नहीं उसका अर्थ है, उसको निकाचना द्रव्य कहते हैं। यानी जो पहले उपशांत रूप था या निवृत्ति निकाचना रूप था जीव के परिणामों के निमित्त जैसे वो निवृत्तिपना निकाचितपना निकल जाता है उसकी उदीर्णा भी होती है, संक्रमण वगैरह इनसे नष्ट होते हैं तो उसमें तो कोई दोष ही नहीं है, पहले थे और वो बाद में वो चले गए, उसमें वो अभी अपना विषय चले गए। पेज नंबर हम 159 करते हैं, अभी यहाँ उसके भी पहले एक बात मुझे थोड़ी लेनी है। देखो अभी तो ये श्रेणी के सम्मुख है, अभी यहाँ अदब प्रवृत्त करण करेगा, तीन करण यहाँ पर भी हो गए, पहला करण सात्विक गुणस्थान में ही हुआ, अपूर्वकरण के लिए अपूर्वकरण गुणस्थान का ही नाम अपूर्वकरण बताया, तीसरा अनिवृत्तिकरण उसका गुणस्थान का नाम भी अनिवृत्तिकरण बताया है, ख्याल में आते हैं बस। तो अभी ये जो जीव तीन करण मानने वाला है तब उसकी अभी क्या क्या पोजीशन है, जो कल हमने उसके परिणाम कैसे होते हैं, कषाय कैसे होते हैं, योग कैसे होते हैं, वेद कौन सा होता है, उसकी चर्चा कल रात को की, अभी थोड़ी ये बात देखनी है यहाँ वो क्या क्या बांध रहा है, कितने प्रकृतियों का उदय है, थोड़ी उसकी जो चर्चा करते हैं। अभी हमने पहले बंद विच्छित्र का प्रकरण यहाँ हुआ था, अभी भी थोड़ा ले लेते हैं क्योंकि कुछ तो नए लोग हैं। जो जीव पहले समय दर्शन प्राप्त करता है, पहले गुणस्थान से ऊपर के गुणस्थानों में जाता है, तो कितनी प्रकृतियाँ ऐसी होती है कि मात्र पहले गुणस्थान में ही बनती, ऊपर के गुणस्थानों में नहीं बनती। जो मात्र पहले गुणस्थान में बनती है, दूसरे तीसरे आदि कहीं पर भी नहीं बनती है, उन प्रकृतियों को कहेंगे इनकी बंदगी विच्छित हुई पहले गुणस्थान में। ऐसी कोई प्रकृति है जो मात्र पहले मिथ्या दृष्टि बांधता है, ऊपर का नहीं बांधता है, आपको कोई मालूम है? हाँ नहीं मालूम, हाँ आपको भैया मिथ्या तो कहाँ बनता है ये तो बताओ ना, ऊपर हमें जितना मालूम है उतना तो बता सकते
हैं।
और अनंतानुबंधी पहले दूसरे दोनों में होता है, दूसरे में भी बनता है, वो अनंतानुबंधी हुआ नहीं है। हाँ 16 प्रकृति नाम कोई गिना सकते हैं? हाँ ऐसा क्रम से बताना है आपको। हाँ बोलो सिंगल से। हाँ उन्होंने ये बताया मिथ्यात्व मुंडक संस्थान नपुसक वेद असंप्राप्त उपाटिका सहन पहले एक स्थावर आतव फिर सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त दिव्य दिव्य सक्रिय नरगति नरगत्यानुकूल्य नरकादि ये प्रकृतियाँ मात्र मिथ्यात् गुणस्थान में बनती है, ऊपर कहीं पर भी नहीं बनती, इसको कहेंगे इनकी बंदगी विचित्ति विचित यानी उसका एन हुआ हुआ पहले गुणस्थान ऊपर कहीं पर भी नहीं बनेगी। चौथे गुणस्थान के बाद तीन गति का नहीं बंद हुआ, वो अभी दूसरे गुणस्थान में तीन इंच गति की बंद विच्छित हो जाएगी, समझ में? चौथे गुणस्थान वाला मनुष्य और तीन इंच देवगति को ही बांधेगा, चौथे गुणस्थान वाला देव और नाग की मनुष्य गति को ही बांधेगा,
तो वहाँ तो दो गतियाँ रहेगी, परंतु वो कौन सा गति वाला क्या बांधता है उसकी डिफरेंस है। अभी हम तो बात यहाँ मुनिराजों की अपेक्षा, मनुष्य गति की अपेक्षा बात करेंगे, क्योंकि मुनिराज अभी सातवें में है, द्वितीय उपशम किया है उन्होंने, अभी श्रेणी के सम्मुख है। तो जो जो बंध विच्छित्ति हो गई है उसका बंध तो अभी नहीं होगा उनके, तो कौन सा बंध होगा हम डिराइव करेंगे। तो ये प्रकृति 16 तो उसका आउट ऑफ क्वेश्चन, वो नहीं बांधेंगे। जो दूसरे गुणस्थान में बनती है और बाद में उसकी विच्छित यानी आगे कहीं नहीं बनती है, ऐसी 25 प्रकृतियाँ। ये कौन बताना चाहते हैं, यहाँ कोई है? लक्ष्मी याद है? अनंतानुबंधी चार, फिर बीच वाले चार संस्थान, बीच वाले चार सरणन। हाँ हाँ, पहले तीरंज गति के चार बताना। तीरंज गति, तीरंज प्रत्यानुपूर्वी, तीरंज आयो, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय और स्त्रीवेद। हाँ, स्त्यानुपूर्ति त्रिक भी है उसमें, और स्त्रीवेद, नीच गोत्र और अप्रशस्त विहार। ये 25 प्रकृतियाँ दूसरे में बंध विच्छित्ति हुई, वो आगे नहीं बन रही। तीसरे गुणस्थान में कोई बंध विच्छित्ति नहीं। चौथे गुणस्थान में 10 है, कौन? वो देवों के लिए 10 है, मनुष्यों के लिए अभी हमने दूसरे गुणस्थान में जो 25 गिनी उसमें और 6 प्रकृति ऐड कर, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु है, औदारिक, औदारिक अंगोपांग, वज्रक्षम, नारासन, इनका बंध मनुष्यों के लिए दूसरे गुणस्थान तक होगा। क्योंकि मनुष्य जब सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो मनुष्य गति को नहीं बांधेंगे, देवगति को बांधेंगे। यानी मनुष्य में से मनुष्य गति या मनुष्यायु बांधने वाले कौन है? मिथ्यादिष्ट। अब चौथे गुणस्थान में आए, अभी हम पुरुषों की, मनुष्यों की बात करें, उन्हें राजों की बात करें, तो अभी उनके कितने प्रकृतियाँ यहाँ बन रही जो आगे नहीं बनेगी? अभी उनके लिए 4 करेंगे, अप्रत्याख्यान चतुष्क। पांचवें गुणस्थान में प्रत्याख्यान आवरण चतुष्क जो बन रही थी उसका विच्छेद हुआ, उसकी विच्छेदी हुई। छठे गुणस्थान में बनने वाली वो आगे सातवें को नहीं बनेगी, तो छठे गुणस्थान में किसकी बंध विच्छित हुई थी? अच्छा हाँ, 6 है मालूम है, अताता वेदी,
और
इस तरह से अताता वेदी, अयशस कीर्ति, अस्थिर, अशुभ, अरति और शोक, ये छठे गुणस्थान की बंध विच्छित। अब कहते सातवें में तो देवायु का बंध होता है, पर यहाँ जो इतनी विशुद्धि है अभी आयु का बंध यहाँ नहीं होगा। द्वितीयोक्षम करने वाले को यहाँ पर आके आयु का बंध नहीं होगा, क्योंकि अभी दो करण परिणाम किए हुए हैं और अभी उसके सन्मुख है, यह आयु का बंध नहीं होगा। तो यानी अभी कौन कौन सी प्रकृतियाँ बांधेगा इसको हमको जरा डिलाइट कर। 5 ज्ञानावरण की प्रकृति पहले गुणस्थान से लेकर 10वें तक बनती, यहाँ पर भी बंधे। दर्शनावरण की 9 प्रकृतियाँ होती है, पहले दो गुणस्थान वाले 9 के 9 बांधते हैं, अभी स्त्यान वृद्धि वगैरह 3 बन रहा है, तो ये दूसरे में, तो अभी यहाँ कितनी बंधेगी? तो 6 बंधेगी, क्योंकि निद्रा प्रज्वला की बंध उचित तो 8वें गुणस्थान में जाते हैं, यानी अभी वो निद्रा प्रज्वला का भी बंद कर रहे हैं। यानी यहाँ दर्शनावरण की 6 बन रही है, गिनो अभी, ज्ञानावरण की 5 बन रही है, दर्शनावरण की 6 बन रही है। अभी जो आसान है वो पहले बताते हैं, अंतराय की 5 बन रही है ना, अंतराय की भी 5 बन रही है। अभी ज्ञानावरण हुआ, दर्शनावरण हुआ, मोहन, हाँ वेदनी की अंतराय भी बता रही है, वेदनी भी 1 बन रही है, कौन सी? साता, क्योंकि असाता तो 6 तक ही बन रही है, साता का बन रहा, असाता का नहीं हो रहा। हाँ, गोत्र उच्च गोत्र बन रहा है, क्योंकि निज गोत्र तो दूसरे तक ही बनता है। अभी आयु यहाँ बनती नहीं है, क्योंकि यहाँ विशुद्ध परिणाम है इतने, तो मोहनीय की क्या बन रहेगा? अभी 7वां गुणस्थान है, मोहनीय कौन कौन से बन रहे? 4 संडवलन बन रहे, 4 संडवलन बन रहे, फिर 9 कषाय में से पुरुष वेद ही बनता है, समय दृष्टि को पुरुष वेद ही बनता है। फिर यहाँ हास्यरति बन देगी, क्योंकि शोक रति तो बंद छुट्टी हो गई छठे में, यहाँ हास्यरति, वह जुगुप्सा तो ध्रुवबंदी है, पहले गुणस्थान से 8वें के अंत तक हर समय बनती है किसी को भी, तो वो बन रहा है, यानी इतने मोहनीय के बन रहे। अब सब देख रहे हैं, अब नाम कर्म नहीं, यहाँ तो देवगति का ही बंद कर रहा है, क्योंकि जीव 7वें गुणस्थान है, जो समय दृष्टि मनुष्य है 4थे में भी है, 5वें में, 6थे, 7वें में, सर्वत्र देवगति को बांध रहा है। अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, पर देवगति यानी देवगत्यानुपूर्वी वो एकलिंग वगैरह हमको पांच तेजस कारण शरीर वगैरह सब मिलकर 28 प्रकृतियों का बंधन हो सकता है, मिनिमम 28। अभी कोई सातवें गुण स्थान में आहार अंगोपांग को बांध सकता है, कोई तीर्थंकर प्रकृति को बांध सकता है, और कोई ऐसा है कि तीर्थंकर और आहारद्वित दोनों को भी बांध सकता है, तो उसमें ही डिफरेंसेस हो। तो टोटल उसके बंध योग्य प्रकृतियां जो अभी हमने देखी थी, किसी को 55 बंधेगी जो 28 का बंध कर रहा है, टोटल ज्ञानावरण की 5, दशा की 6, अंतरा की 5, वेदिनी की 1, मुनि की 3, सब मिलकर सबकी टोटल कोई 55 का बंध करेगा, 55 प्लस तीर्थंकर 56 का बंध करेगा, 55 प्लस केवल आहारद्विक 57 का बंध करेगा, 55 प्लस तीर्थंकर प्लस आहारद्विक 58 का बंध। ये बंध में डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी ये जीव ऐसे पोजिशन में है कि इतना का बंध हो रहा है, और जो हमने बाद में पहले गिनी थी उनका बंध भी उसका रूप है। इतने की बात ख्याल, ये सातवें गुणस्थान की पोजिशन है। ऊपर के गुणस्थान में जिसका जिसकी बंध विच्छित होती चली जाएगी वहाँ उसको गिनी। अब यहाँ उदय रोग कितनी प्रकृतियाँ है उसकी भी बात करनी पड़ेगी, उदय किस किस का चल रहा है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ ज्ञानावरण का उदय है कि नहीं है? कौन से ज्ञानावरण का है? पांचों का है। दर्शनावरण देखो, बंध यहाँ 6 का है, दर्शनावरण के कितने का उदय है? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। निद्रा प्रचला का उदय 12वें तक बताया है, उपांत समय तक, तो यहाँ उसका उदय होगा कि नहीं? ये जागृत अवस्था में कार्य होगा, ये प्रथमोक्षण सम्यक्त्व के बारे में यहाँ लिखा है पुस्तक में ही, वहाँ निद्रा प्रचला के उदय में ये कार्य नहीं होगा। इतनी विशुद्धि का बढ़ना जो है अंतरंग में जो स्थिरता है, ये जयधवला में भी आता है, शपक श्रेणी में उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा है। ये 12वें गुणस्थान में भले उपांत समय तक उदय बताया है, परंतु वो बाद में हो सकता है। अभी यहाँ जो श्रेणी का कार्य होगा, यहाँ पर निद्रा प्रचला का उदय नहीं पाएगा, 4 का उदय होगा। बाद में ऑप्शनल है वो, तो अभी श्रेणी का कार्य हो जाने के बाद ऊपर उसका एक समय का उदय भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखा है कि ध्यान के काल में अनंत गुणी जो विशुद्धता है उस समय में वो निद्रा प्रचला का उदय नहीं होगा, ये ऐसा लिखा है वहाँ पर।
तो फिर ये चौथे गुण स्थान में सम्यक्त्व के काल में भी निद्रा प्रचला का उदय?
सम्यक्त्व के काल में होना तो बात अलग है, उपशम सम्यक्त्व ये पूरा शुद्धोपयोग जो हम कहते हैं उसका निद्रा का उदय ऐसा कुछ नहीं है। जैसे उपशम करने के काल में ताता वेदने का बंध हो रहा था, ताता का तब रुका था, बंधापसरण में ही रुका था प्रायोगलब्धि में ही, परंतु उपशम सम्यक्त्व के काल में साता अताता दोनों बनती है और अतिशोक भी बनता है, उसके उदय भी हो गए वैसे। यानी जो शुरुआत में जो विशुद्धि की जो सात बातें करण की बात है वो बात अलग है, और बाद में वो सब वेरिएशन हो सकते हैं। यानी उदय रूप जो हमने देखा था, 5 ज्ञानावरण का उदय है, 4 दर्शनावरण का उदय हो रहा है, अंतराय 5 का उदय चलता है, अब वेदनीय कोई एक का उदय होगा तो साता वेदनी का उदय होगा कि असात का होगा? दोनों का ही हो सकता, किसी का एक हो सकता है, एट द टाइम एक का ही होता है। अरे असाता का उदय तो 14वें गुणस्थान तक बताया है, किसी भी उदय हो तो उसमें कोई बात नहीं। किस आयु का उदय चल रहा है यहाँ पर? ये तो कॉमन सेंस है ना, ये में कोई रटने की बात नहीं है। मनुष्य आयु का उदय हो रहा है, हम सबको तो मनुष्य आयु का उदय हो रहा है, उनके कौन से गोत्र का उदय हो रहा है? उच्च गोत्र ही है, क्योंकि ये तो मुनिराज है। मोहनीय में किस चीज का उदय हो रहा है? देखो बंद, कौन से संज्वलन? क्रोध के, मान के, माया के, लोग चारों में से ऐसा कम, चारों में से एक संज्वलन का उदय, वेद में से तीनों में से कोई भी एक वेद का उदय है। अब हास्य शोक का, हास्य रति का उदय है कि अरति शोक का उदय? उदय किसी का भी हो सकता, हमने बंध हास्य रति का देखा था, उदय में किसी का भी हो सकता है, क्योंकि वो पलटने उसका पलटता रहता है उदय, तो उदय कोई भी हो सकता है। भय जुगुप्सा में ऐसा नियम है, किसी को दोनों का उदय होता है, किसी को अकेले भय का, किसी को अकेले जुगुप्सा का,
वो भी टर्न होता रहता है, किसी को दोनों का भी नहीं, अंतर्मुख अंतर्मुख में ये उद्देशन होता है, इसलिए वो उदय रूप इस तरह से पाए जाते हैं। यानी इस तरह हम थोड़ा अंदाजा लेते हैं कि ये मुनिराज जो है अभी श्रेणी के सन्मुख है, उनके बंद कैसे हो रहे हैं, उदय कैसे हो रहे हैं। कल हमने सत्व की भी बात देखी थी, कौन से प्रकृतियों का सत्व नहीं होता, हमने लास्ट लेक्चर में कल देखा, अनंत आनंद विचार का तत्व नहीं है, और सीरियल चालू नरक गति है, नरकायु नहीं है, नरकायु का तत्व नहीं है, और सीरियल चालू का तत्व नहीं, सत्ता में बंधी हुई नहीं है, देवायु भी हो सकती है नहीं भी हो सकती, वो भजनीय में भजनीय ने ऑप्शन है, तीर्थंकर प्रकृति हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, आहार अभी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, वो ऑप्शन है मेरा, बाकी जो है वो सब सत्ता में है, जैसे एक है अपर्याप्त है सूक्ष्म है साधारण सब सत्ता में होगी, क्योंकि कभी ना कभी मिथ्या तो में बांध कर आया है ना जीव, अभी मुनिराज हुए हैं पर सत्ता में से कहाँ गए हैं, वो सब सत्ता में पड़े हैं, कोई बात नहीं, ऐसे परिणाम करने वाले भी ऊपर चढ़े और उनका कभी उदय नहीं होने वाला, हमें क्या लगता है अरे हमने इतना का पाप किया है, हमने ऐसे कर्म बांधे उसका क्या होगा, अरे बड़े बने रहेंगे अन्य रूप से, और उदय में आकर गिर जाएंगे, उसकी कोई चिंता हमें नहीं करनी है, ये सारे अत्यंत जो प्रशस्त कर्म बांधे हैं, नरक गति वगैरह बांधी होगी कि नहीं बांधी होगी, तो ये सूक्ष्म पर्याप्त साधारण ये सभी सत्ता में पड़े अपने आप के सबके, वो मुनिराज के लिए सत्ता में कोई चिंता नहीं, उसका कोई उदय आने वाला नहीं होगी, परिणाम बिगड़ जाएंगे मिथ्या समय जाएंगे तो आ जाएगा, हमें आती है बात, अभी हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ अभी हम पेज नंबर 159 पर थे, ये हमने थोड़ा उदय वगैरह बंद के बारे में यहाँ देख ली बात, हाँ उदय में हमने जो बंद तो हमने देखी ना, उदय की भी बात देखते हैं, उदय कितने का हो सकता है ऐसा आपका प्रश्न है ना, तो उदय रूप यहाँ पर क्योंकि उदय में भी भय और जिगुप्सा के विकल्प होते हैं, आप गिनो देखो, ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, 14 हो गई, वेदनी 1, 15, मनुष्यायु 16, उच्च गोत्र 17, मोनी की 4, 5 या 6, पहले 17 और 4 गिनो फिर 5 और 6 करेंगे बाद में, 17, 4, 21, और नाम कर्म की कितनी होती है, तो मनुष्य पर्याप्त मनुष्यों के उदय योग्य 30 प्रकृतियाँ होती हैं, जैसे देव में हमने 28 प्रकृतियाँ देखी थी, यहाँ मनुष्य की योग्य 30 प्रकृतियाँ होती हैं, वो 30 को उसमें ऐड कर दो, कितने हो गए टोटल, हाँ तो उसमें अगर भय जिगुप्सा आके वो बिना भय जिगुप्सा को हमने 4 किया, 1 उसमें ऐड करो तो 52 हो जाए, 2 ऐड कर दो 53, इतने उसके उदय होंगे। अब आगे बढ़ेंगे 159 पेज पर, किसकी उदय में एक ही गिनना है, संज्वलन की एक ही एक संज्वलन है, एक वेद है, एक युगल है, हस्तरथ या शोक रथी है, ये 4 हो गए, भय जिगुप्सा नहीं भी हो सकती, अकेले भय या अकेले जिगुप्सा होगी तो 5 होगी और दोनों होगी तो 6 होगी, कौन सी नहीं कंटिन्यूस नहीं, इनका उदय है वो चेंज होते रहता है, ये स्वयं है वो ऐसे अध्रुव उदय कहने में आपको, वो उदय इनका ऑप्शनल होता रहता है, यानी जिसका जो उदय है वही चलता रहेगा, ऐसी कोई जरूरी नहीं है, तीर्थंकर का कब होता है उदय, बोलो बोलो आप ही बोलो, तीर्थंकर प्रकृति सत्ता में है बांध भी रहे हैं, जो सत्ता में वो बांध ही रहा है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध हर समय होता रहता है, जो बांधता है हर समय बांधता है, और वो 8वें गुण स्थान तक बनता रहेगा, और उसका उदय कब होगा, 13वें उसके पहले उदय नहीं, तो आहार का उदय होगा कि नहीं होगा, वो 6वें में होगा, क्योंकि 6वें गुण स्थान पर भी आहार शरीर बनाते हैं तब उसका उदय, अब यहाँ बंद है, हाँ अब आना अपने पेज पर, पेज नंबर 159, ये हमने देखा कि क्या क्या होता है, अब वो सन्मुख हुआ है उपशम श्रेणी के, अब यहाँ 220 की टीका।
ये चारित्रमों की उपशम ना करने वाले के 8 अधिकार बताए, यानी यहाँ 8 प्रोसेसेस अलग अलग होने वाले हैं
जिसका हम क्रम से वर्णन देखने वाले।
अब पढ़ते मैं एक एक नाम लूंगी, आप जरा रिपीट करो, थोड़ा तो फ्रेश हो जाएगी ना नाम लेने का। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, अंतरकरण और उपशमकरण। ये चारित्र होंगे जो अभी उपशम ना करने वाला है, ये जीव में ऐसे ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। ये तो तीन नाम तो हम परिचित हैं ना, कौन सा, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। अब ये जो उपशम कैसे करता है, अंतर कैसे करता है, वो भी हमने पढ़ चुके हैं। वो कहाँ क्या होता है, कौन सी प्रकृतियों में, वो सब हम देखेंगे। वहाँ तो हमने दर्शन मोहनी पर देखा था, अब यहाँ तो हमें चारित्र मोहनी पर सब देखे। ये सारे नाम यहाँ लिखे हैं आपके बोर्ड पर और फिर चार्ट में भी है। देखो अब ऐसे 8 अधिकार चारित्र मोह के उपशम विधान में पाए जाते हैं। वहाँ अधकरण को सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनि करते। इसका अर्थ क्या है, जो तीन करण शुरुआत किए इसके लिए उपशम श्रेणी के लिए, उसका पहला जो अधकरण शुरू किया उन मुनिराजों को ही हम सातिशय अप्रमत्त कहें, क्योंकि उनका जो सातवां गुणस्थान में ही वो अधकरण होता है और अधकरण के बाद इमीडिएट वो 8वें में चल के वो अपूर्वकरण करेंगे। इसलिए सातवां जो गुणस्थान है वहीं पर ये अधकरण की बात चालू होती है। अधकरण में जो जो आवश्यक बातें चार बताई वो यहाँ पर भी होती है। कौन सी चार बातें हैं, हाँ, जीव की विशुद्धि अनंत गुणा बढ़ती चली जाती है।
ये जरा लगा ना, ये अधर प्रवृत्त वाला चार्ट लगा लो इधर।
हमने बहुत बार देखे है फिर भी जरा दोबारा उसको देख लेते हैं। हाँ देखो क्या लिखा है, आपके पास चार्ट है, जिसको नहीं दिख रहा है तो अपने चार्ट में देख लेना, नजदीक है ना। तो अदब प्रवृत्तकरण में क्या क्या बातें होती है, तो कहते हैं विशुद्धि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ती है। एक समय में जितनी विशुद्धि है दूसरे समय में उससे अनंत गुणा, उससे अनंत गुणा, उससे अनंत गुणा। और वो विशुद्धि के निमित्त से वहाँ क्या क्या बातें होती है, तो स्थिति बंधापसरण होता है। देखो जितना स्थिति बंध हो रहा है अंतर्मुहूर्त तक तो उतना ही होगा, उसके बाद उसमें अपसरण में कटौती हो जाएगी और छोटा स्थिति बंध हो जाएगा। हर अंतर्मुहूर्त में वो कटौती होती चली जाएगी। जितना अधकरण का अंतर्मुहूर्त है उसमें ऐसे स्थिति बंध अपसरण हजारों हो जाएगा। उसके भी हर एक के अपना अपना अंतर्मुहूर्त चला छोटा, तो ये स्थिति बंधापसरण होते चले जाते, यानी वो उसकी स्थिति कम बनती रहती। यहाँ कोई कांडघात नहीं हो रहे, स्थिति सत्व घट नहीं हो रहा है, परंतु जो नया बंध हो रहा है वो कम स्थिति वाला बन रहा है। सभी कर्म में आयु तो बनती नहीं है। अभी हमने कितनी कर्म प्रकृतियां बनती वो देखी थी, ज्ञानावरण की 5 वगैरह, वो दर्शनावरण की 6-5 अंतराय वगैरह देखी थी ना, जो बनने वाली प्रकृतियां हैं उनका स्थिति बंध घटते चला जाता है। ये इसका अर्थ है, ये स्थिति बंधा होता है। इसलिए हमने कौन सी प्रकृतियां बनती है उसका थोड़ा अंदाजा लगाया था। अब ध्यान देते
प्रश्न,
अपसरण जो स्थिति अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण बन रही है उसमें भी पल्ले का संख्या तो अभाव थोड़ा कट कर बन रही है। स्थिति अधिक बनना कुछ अच्छी बात नहीं है, अधिक स्थिति तो संसार का कारण है। यहाँ लिखा है देखो, ये भूमिका में बात आती है, क्योंकि स्थिति का घटना तो प्रशस्त अप्रशस्त में सब में होना चाहिए, वो स्थिति सत्व भी और बंध भी। क्योंकि अधिक बंध तो हम कहते नहीं, नहीं प्रशस्त है तो अच्छी, अधिक बंध नहीं तो अच्छा है, वो नहीं है। क्योंकि वो जब तक कोई भी प्रकृति है प्रशस्त हो या अप्रशस्त, तब तक तो उसका संसार में से छूटना ही होगा। बाजार मिलेगा तो मैं इमीडिएट बता देती हूँ। मैंने ऐसा लिखा है उसमें कि स्थिति का घटना तो दोनों में ही होता है, क्योंकि जो अधिक स्थिति वो संसार का कारण है। यानी ये सहज रूप से जो मोक्ष मार्ग में चढ़ता है उसकी स्थिति भी घटती चली जाती है, और जहाँ विशुद्धि इतनी अधिक है वहाँ स्थिति और अधिक घटती चली जाती है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। 92 में पहले भूमिका में लिखाई है, कोई बात नहीं। चलो अभी हम अपने अपना पढ़ेंगे, क्योंकि वो ढूंढने में समय चला जाएगा, वैसे ही समय ढूंढने को है। 22 में लिखा है वैसे स्थिति बंधापसरण, वो वहां तो समझाया है। ठीक है, अपना पेज नंबर निकालना। चलो हमने क्या देखा था, एक तो विशुद्धि का अनंत गुना बढ़ना, दूसरी बात स्थिति बंधापसरण, तीसरी बात क्या हो रही है, प्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय यानी जितना पहले समय उससे दूसरे समय में अनंत गुना बढ़ता हुआ चतुष्थांगत अनुभाग बंध, बंध की बात। चतुष्थान का अर्थ है, हमने देखा था प्रशस्त प्रकृतियों के स्पर्गत जो अनंत जो परमाणु है उनको हम चार नामों से बताते हैं। जो मिनिमम अनुभाग है, प्रशस्त का मिनिमम अनुभाग है आपको थोड़ा फल मिलता है, उसका अधिक अनुभाग है ज़्यादा फल मिलता है, जिसको हम संयोग रूप से अन्य रूप से कहते हैं। तो उसके नाम हमने देखे थे कौन से, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। तो अमृत टाइप के वहाँ स्पर्धक बनेंगे तो उसको चतुष्थान कहते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग है तो वह तो जगन जैसे उत्कृष्ट तक के वो सब अनुभाग बन जाएगी, उसको कहेंगे चतुष्थान वाला अनुभाग बनेगा। जो बंधने के बाद मान सत्ता में तो चतुष्थान हो ही जाते हैं, क्योंकि बंधे हुए तो सत्ता में है तो सत्ता का भी अनुभाग चतुष्थान हो गया। अब अप्रशस्त प्रकृतियों में यहाँ कौन कौन सी प्रशस्त प्रकृतियाँ बन रही है, सातावेदनी है, उच्च गोत्र है, यशस्कृति, कितनी सारी प्रशस्त देवगति के साथ जो बनने वाली ये प्रशस्त प्रकृतियाँ बहुत सारी बन रही हैं, उनका अनुभव ये तीर्थंकर प्रकृति किसी को बन रही है, आहार अंकित बन रही है, हमने अभी बनने वाली गिनाई थी ना, उसमें जो प्रशस्त प्रकृतियाँ है उनका अनुभव चतुष्थान वाला हो रहा है, अमृत टाइप का उनका अनुभव बन हो रहा है। अब अप्रशस्त में क्या हो रहा है, अप्रशस्त प्रकृतियों का प्रति समय अनंत गुणा घटता हुआ द्विस्थानगत अनुभाग बन रहा है। ये कौन सी अप्रशस्त प्रकृतियां यहाँ बन रही है, 47 की 47 नहीं बन रही है, परंतु यहाँ जो बन रही है कौन सी, 5 ज्ञानावरण बन रही है वो अप्रशस्त है, दर्शनावरण 6 बन रही है वो अप्रशस्त है, 5 अंतराय वो भी अप्रशस्त है, अभी यहाँ की संकुलन बन रही है, पुरुष वेद बन रहा है, मोहनी की सारी अप्रशस्त ही तो है, इनका अनुभाग प्रति समय अनंत गुना घटता हुआ बन रहा है, एक बात। और यहाँ कौन सी अघाते में कौन सी बन रही है अप्रशस्त, सातावेदनी बन रही है, आयु बंद नहीं रही, उच्च गोत्र बन रहा है, और नाम कर्म की तो 28 वाली जो देवगति की साथ बनने वाली है उसमें कौन सी ऐसी अप्रशस्त प्रकृति है, बोलो अप्रशस्त कौन सी बन रही है, कौन सा जो? देखो देवगति, देवगत्यानुकूली, वैक्रिक अंगोपा, तेजस, कारमान, फिर अगुण लघु चतुष्क, वर्ण चतुष्क, त्रस चतुष्क, तो उसमें कौन कौन सी है, ये स्थिरादि 6 शुभ ही है, क्योंकि वो अस्थिर वगैरह भी यहाँ नहीं बन रही है, सत्यगुण स्थान के ऊपर है, तो यहाँ कौन सी अशुभ बन रही है, उपघात, अगुरु लघु उपघात परघात उच्छ्वास जो है ना उसमें उपघात वो अशुभ प्रवृत्ति बन रही है, और बाकी तो भांति वाले तो अशुभ है, उनका अनुभाग घटकर बन रहा है, ये उसका अर्थ है। उपघात नाम कर्म जो है वो अप्रशस्त प्रकृति, बाकी सारी प्रशस्त ही उसमें। तो उनका द्विस्थानगत अनुभाग बंद हो रहा है, ये इसका अर्थ है। ये अदब प्रवृत्तकरण सातवें गुण स्थान में होता है, उसी जिनको यहाँ सातिशय अप्रमत्त कहते हैं। ये सातवें गुण स्थान में अदब प्रवृत्तकरण हो रहा है। तीन करण में से पहला करण यहाँ सातवें गुण स्थान में होता है, उस जीव का नाम क्या है? सातिशय अप्रमत्त। और जब तक ये सातिशय नहीं अवस्था थी, उस जीव को क्या कहते हैं? स्वस्थान अप्रमत्त। रेगुलर छठा सातवां चलता है तब तक उसको स्वस्थान कहा था। जब श्रेणी के लिए उसने अधकरण किया, उस समय उसको हम सातिशय अप्रमत्त कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 160 पेज पर कि अदब पहली लाइन अदब कर
असमत तक तो द्वितीयोक्षम संज्ञा का कार्य चला, और अब साथी से अप्रमत्त
क्योंकि द्वितीयोक्षम वाला छठा सातवां छठा सातवां कर रहा
था,
वो स्वस्थान वाला था।
और साथी से अप्रमत्त तक क्या था?
हाँ, अभी शुरुआत की थी उसने, यानी उपशम अवस्था यहाँ से, उपशम यहाँ से उसको कहेंगे क्योंकि अदब कर्म यहाँ चल रहा है उसका। फिर भी आठवें गुण स्थान से उसको उपशमक नाम दिया जाता है। एक्चुअली उपशमना का कार्य नौवे में जाकर करेगा, पर वो सारा प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाता है। हाँ, क्योंकि करण परिणाम यहाँ से शुरू हो गए। करण परिणाम में से पहला करण परिणाम कौन सा है? अदब प्रवृत्त करण। वो सातवें गुण स्थान में आरंभ हो गया, सातवें गुण स्थान में ही अदब प्रवृत्त करण चलेगा। यहाँ कोई अभी स्थिति कांड घात नहीं हो रहे, गुण श्रेणी जो छठे सातवें वाली थी वो चल रही है। अब नई गुण श्रेणी बनेगी, किसके लिए? श्रेणी वाले। वो बड़ी होगी कि छोटी होगी? छोटी होगी, क्योंकि विशुद्धि ज़्यादा है ना, और उसमें अपकर्षण होने वाला द्रव्य भी ज़्यादा होगा। ये सब बातें अभी बताने वाले हैं। पहला हाँ, आपका ये कहने तीसरी बार करण परिणाम मांडे ना, पहली बार किए तो अनंतानुबंधी की विषय योजना की, दूसरी बार तीन करण परिणाम मांडे तब द्वितीय उपशम किया, अब तीसरी बार करण परिणाम मांड रहे हैं तब जाके उपशम श्रेणी चले। ये ऊपर ये उसका अर्थ है। अब यहाँ पहली लाइन फिर पढ़ते वहाँ अधक करण को, अधक करण में ये जो चार बातें होती है वो हमने देखी, जो बोर्ड पर लिए आपके पास भी है चार्ट में। अधक करण को सातिशय अप्रमत्त गुणस्थानवर्ती मुनिराज करते हैं, उसका लक्षण और उसके द्वारा किया कार्य, जो जो कार्य करते हैं उसकी बात है, जो अगली यहाँ बोल पड़ी है उसका कार्य है। जैसे प्रथमोपशम, वहाँ प रह गया, प्रथमोपशम हुआ है, प्रथमोपशम सम्यक के सन्मुख होने पर कहे थे, वैसे यहाँ भी जानना, जो हमने बहुत बार उसकी चर्चा की है क्या क्या होता है, ये चार बातों में क्या क्या बातें होती है उसकी चर्चा हमने कर दी है। विशेष इतना, प्रथमोपशम सम्यक में कौन सी प्रकृति बांध रहा था, किसकी क्या, वो तो बात अलग थी, और यहाँ बनने वाली प्रकृति अलग है, इसलिए कहते विशेष इतना। विशेष इतना का अर्थ है डिफरेंस इतना है, दोनों में क्या तफावत है, वहाँ प्रथमोपशम करने वाले की और इनमें क्या डिफरेंस है, तो कहते यहाँ, यहाँ अभी श्रेणी के सन्मुख है, यहाँ संयमी के पाए जाने वाली प्रकृतियों का बंध हमने अभी गिना था, कौन कौन सी संयमी ने अभी अप्रमत्त गुणस्थान वर्ती है, वहाँ ये कौन से प्रकृतियों का बंध करता है। प्रथमोपशम सम्यक्त्व वाला मिथ्या दृष्टि था, वहाँ बंधने वाली प्रकृतियाँ जुदी थी, वहाँ मिथ्यात्व अनंतानुबंधी त्याग बुद्धि वो सब कुछ बंध रहा था, यहाँ बंधने वाली प्रकृतियाँ जुदी है, इसलिए डिफरेंस इतना है। यहाँ संयमी के पाए जाने वाली प्रकृतियों का बंध और उदय कहना चाहिए, इसलिए हमने अभी बंधने वाली प्रकृतियों की भी चर्चा की, और यहाँ कौन से उदय रूप है उसकी भी थोड़ी चर्चा की। भूल गए कोई बात नहीं है, परंतु सुना ना आपने क्या क्या होता था, इतना उदय कहना। और सत्व यानी बंध की बात देखी, उदय की बात देखी, और सत्व कितने का होता है? अनंतानुबंधी चतुष्क, नरकायु और तिर्यंचायु बिना, यानी इनको छोड़कर अन्य प्रकृतियों का सत्व कहना। उसमें भी ऑप्शनल सत्व भी हमने देखा था, देवायु किसी के है किसी के नहीं है, आहारक और तीर्थंकर किसी के है किसी के नहीं है, बाकी तो सत्व सभी प्रकृतियों का, जो हमने वो सारे जितने गिने थे ना, प्रशस्त प्रशस्त जितने होते हैं, केंद्रीय इंद्रिय सभी का स्वस्थ सत्व पड़ा है सत्ता में, पर उदय रूप कितने हैं, बंध रूप कितने, उसको भी हमने देखा। आप पूछते हैं निज गोत्र का सत्व होना आवश्यक है क्या? अरे सत्व में कोई आवश्यकता नहीं है, वो सत्व में पड़ा ही है, क्योंकि नीचे गोत्र जाएगा कहाँ, जितना बांध के आए यहाँ पर। हमने आपको ये भी बोला था कि भले 2000 सागर के अंतिम भव में ये उपशम श्रेणी या प्रभु श्रेणी मान रहा हो, तो भी उसके सत्ता में असंख्यात एकेंद्रियों के भवों में बंधे हुए भी परमाणु वहाँ पड़े हैं। तो ये जो समय, ये अभी तो मुनिराज हुए हैं, तो जब वो पहले दूसरे गुणस्थान में इस भव में या पहले भव में भी थे, उसके परमाणु जाएंगे कहाँ? सब सत्ता में पड़े, निज गोत्र भी पड़ा है। कांडक घात होने से कितना, अभी अंतर कोड़ा कोड़ी प्रमाण सभी सत्ता में पड़े हैं। कांडक घात हुआ तो भी क्या होगा, सभी की सत्ता पड़ी है। जब तक क्षय नहीं होता है तब तक सभी प्रकृतियों की सत्ता बनी है। वो क्षय तो क्षपक श्रेणी में होगा, उपशम श्रेणी में तो किसी का क्षय नहीं होने वाला है। अब अपना समय हो चुका है, अब यही रुकते हैं। बोलो 24 भगवान।